ओम शांति। आदरणीय भाई जी को बाबा ने 1962 में ही अपनी नजरों में उनको कैद किया और उसके बाद विद्यार्थी जीवन से ही बाबा को पहचान, विश्व कल्याण के कार्य में अंगुली लगाकर गोवर्धन उठाने का प्रण किया। साकार मम्मा बाबा की पालना भी आपने ली है और साकार बाबा जब अव्यक्त हुए उस समय का सीन आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो कहते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदल दो तो किनारे बदल जाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा की एक सोच ने विश्व को परिवर्तन की राह दिखाई, उन्हीं अनुभवों को आज भाई जी के मुख से हम सभी सुनेंगे। आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी।
ओम शांति। एक बार सब हम सब मिलकर के इकट्ठे ही ओम शांति बोलेंगे। पहले हम सब लोग एक अंदर गहरा श्वास खींचेंगे और उसके बाद श्वास को निकालते हुए लंबे समय तक ओम शांति बोलेंगे। ओ शांति। ब्रह्मा बाप समान अनुभव की अथॉरिटी के साथ साथ नम्रचित व निर्माणचित कैसे बने, इसके आधार पर ही आज हम सब लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे। ब्रह्मा बाप का परिचय, बाबा का अनुभव, यह सब बातें तो हमने कई बार सुनी भी होंगी, पुस्तकों में भी पढ़ा है और आज की मुरली में बाबा ने कुछ कुछ उसका हिंट भी दिया है। आज बाबा ने विशेष एक बात पर हम सबका ध्यान खिंचवाया कि समय की पुकार क्या है। समय समय पर जैसे समय बदलता जाता है, समय की पुकार बदलती जाती है। तो वर्तमान समय बाप दादा ने हम बच्चों को आज की मुरली में तो विशेष कहा, क्या समय की पुकार क्या है? आज बाबा ने कहा दाता बन। दाता बनना ये विशेष बाबा ने कहा आज के समय की पुकार है। तो ये कॉल ऑफ द टाइम है, समय की पुकार है। और जब हम समय की पुकार की बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रकृति के अंदर, संसार के अंदर सबसे बड़ा दाता कौन है? कहाँ नजर जाती है जिससे सब प्रकार की चीजें मिलती हैं? सबसे बड़ी दाता है हमारी धरती माता, पृथ्वी। देखो, पृथ्वी से सब प्रकार की चीजें हम बच्चों को मिलती हैं। पृथ्वी से अनाज भी पैदा होता है, फल फ्रूट जल पानी सब चीज पृथ्वी से मिलती है। तो इसीलिए जब बाबा कहता है दाता बनो, तो हम सब की नजर स्वाभाविक रीति से पृथ्वी की तरफ जाती है और ये आवश्यक है कि पृथ्वी के गुण अपने अंदर हम और धारण करते जाएंगे तो पृथ्वी के साथ हमारे संस्कार मिलते जाएंगे और हम स्वतः ही दाता बनते जाएंगे। तो प्रकृति जिसमें ये बाहर के पांच तत्व तो आते ही हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, और साथ ही साथ एक प्रकृति का मतलब होता है हमारा स्वभाव, संस्कार। नॉर्मल वे में हम कह देते हैं ये मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, मेरी नेचर है, कह देते हैं ना। तो हमारी अंदर की नेचर और ये बाहर की नेचर, पांच तत्व, इन दोनों को जितना हम आपस में मैच करते चलेंगे, मिलाते चलेंगे, अपनी नेचर को बाहर की प्रकृति के अनुरूप बनाते चलेंगे, क्योंकि बाहर की प्रकृति जो है पांच तत्व ये हैं बेहद के। और आज भी बाबा ने कहा है जितना हम अपने अंदर बेहद का गुण धारण करते जाएंगे उतना हम दाता बन करके सदा देते जाएंगे। तो प्रकृति के अंदर ये एक विशेष गुण है कि वो बेहद की है। चाहे कोई भी तत्व ले लें, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, सब बहुत अनंत है, बेहद में है। और जितना हम अपने गुणों को उनके अनुरूप बनाते जाते हैं हम भी बेहद के होते जाते हैं, हमारे स्वभाव, संस्कार, हमारी प्रकृति भी बेहद की होती जाती है। और बाबा भी जो चाहता है हम सदा बेहद में रहें, हद में न रहें। जब हद में रहते हैं तो ही समस्याएं आती हैं। तो इसलिए एक बाबा ने कहा कि बेहद की वृत्ति के लिए दातापन का संस्कार धारण करते चलो। और बाबा ने क्या कहा आज की मुरली में, साथ ही साथ इसके लिए और क्या रखो। बाबा ने एक बात और बताई आज की मुरली में कि दिल और दिमाग ये जो दो हैं इन्हें क्या रखो, खाली रखो। दिल और दिमाग बहुत बिजी रहते हैं तो क्या होता है, सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, जितना इसमें बिजी रहते हैं तो दिमाग जब फ्री ही नहीं होता तो बाबा जो हमें टच कराना चाहता है, जो बाबा संदेश देना चाहता है उसके लिए दिमाग फ्री ही नहीं होता तो बाबा की जो टचिंग आती है उसको हम कैच ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए आवश्यकता है कि दिमाग को भी और दिल को भी खाली रखें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना? आज भी बाबा ने कहा ना, एक जगह आज बाबा ने कहा कि क्षमा के मास्टर सागर बनो। क्योंकि जब किसी की कोई बात दिल में बैठ जाती है, खास करके आत्मा को संस्कार है, किसी की कमी कमजोरियां जल्दी नजर आ जाती हैं, गुण कम नजर आते हैं, इसीलिए कमी कमजोरी जब किसी की दिल में बैठ जाती है तो क्या, बस वही व्यक्ति ही उसी के स्वभाव, संस्कार, कमी कमजोरियां याद आती रहेंगी और इस कारण से हम उसे क्षमा नहीं कर पाते। जो बाबा ने आज कहा क्षमा के सागर बनो, क्योंकि बाबा हमें बहुत महान बनाना चाहता है। और आज ही बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप समान अनुभवी मूरत के साथ साथ नम्र चित और निर्माण चित बनो। तो इसीलिए हर मनुष्य के पास, हाँ, जब से वो पैदा होता है उस पे दो शक्तियां विशेष होती है। हर मनुष्य के पास दो शक्तियां होती हैं, एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। ये दो शक्तियां हर मनुष्य के पास होती है, लेकिन जीवन की विडंबना क्या है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो हमें बहुत वर्षों तक याद रहती है। और इस कारण से क्या होता है कि जो किसी की कोई भी कमी कमजोरी की बात है, किसी ने हमारे साथ कभी कोई गलत किया है, उसकी बात वो भूल जानी चाहिए, वो तो वर्षों तक याद रहती है। और इस कारण से क्या होता है, मन भारी होता रहता है। जो बाबा ने कहा दिमाग और दिल दोनों खाली रखो, तो वो दिल को हम खाली नहीं रख पाते। जब भी उस व्यक्ति की याद आएगी, परिस्थिति की याद आएगी, किसी का स्वभाव संस्कार बुद्धि में आएगा, तो बस वो ही बात याद आके बार बार भारी होते रहेंगे, और इस कारण से उस बात को भूल नहीं पाते। तो इसीलिए जो भूलने की बात है, वो उस भूलने की शक्ति को हमें जीवन में अप्लाई करना चाहिए, और इस वो ही वास्तव में क्षमा की शक्ति है। किसी भी व्यक्ति को हम क्षमा तभी कर सकते हैं जब उस व्यक्ति की कोई बात हमने दिल में नहीं रखी होगी। और ब्रह्मा बाबा को हम देखते थे, हम ज्ञान में आए लगभग 1962 के करीब, और ब्रह्मा बाबा के साथ भी रहने का बहुत मौका मिला। कई बार बाबा के साथ मिले, कानपुर में मिले, दिल्ली में मिले, दो बार मिले, कानपुर में भी मिले, मधुबन में तो अनेक बार मिले। तो देखा बाबा कैसे अनुभवी मूरत, और बड़ी से बड़ी भी कोई बात हो जाती थी, कोई घटना हो जाती थी, बस तुरंत ही बाबा ड्रामा की ढाल पर लेकर के उसे उस बात को भूल जाते थे। उस व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की कोई कमी कमजोरी की बात भूल करके, और जैसे वो घटना हुई नहीं। और इस रीति से बहुत सदा निर्माण चित्त, नम्र चित्त बाबा रहते थे। तो अनुभव, अनुभव कहा ही उसे जाता है जो अपने जीवन में हमने व्यवहार में अनुभव किया हो। और इसीलिए कहा है, पुरानी कहावत है, सभी ने सुनी होगी कि जहां न पहुंचे रवि वहां आगे क्या है, वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। जहां कवि भी अपनी कल्पना से नहीं, वहां अनुभवी तुरंत पहुंच जाता है, क्योंकि जीवन में अनुभव किया हुआ है ना। आपने अनुभव किया है कि भाई रसगुल्ला मीठा होता है, अब आपको कोई कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे, नहीं रसगुल्ला तो नमकीन होता है, कड़वा होता है, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि अनुभव किया हुआ है रसगुल्ला मीठा है। इसीलिए अनुभव कभी भी गलत नहीं होता, अनुभव बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए बाबा अनुभव की अथॉरिटी थे, बहुत नम्रचित। हमें एक घटना याद आती है, हम तब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा करते थे धनबाद में, और यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी में मधुबन में आए थे, शायद 64-65 की बात है। तो दोपहर का समय था, दोपहर को कोई आराम करने की भी आदत नहीं थी, और लगभग ऐसा ही 3 बजे का समय रहा होगा, दोपहर का 3-3:30 का। तो हम भी जग रहे थे बाहर मधुबन में, हिस्ट्री हॉल के बाहर ही आंगन में थे, तो बाहर सड़क पर देखा कि कुछ सन्यासी वगैरह वहां से जा रहे थे, 3-4 सन्यासी, उनमें एक उनका मुख्य गुरुजी होगा, क्योंकि उसके साथ साथ और भी उनके दूसरे सन्यासी भी जा रहे थे। और वो जो गुरुजी थे गेट के पास रुके, गेट के पास रुक करके उन्होंने थोड़ा देखा गेट की तरफ, और फिर अंदर वहां जो पहरे पर बहन जी थे, पहले एक बूढ़ी दादी हुआ करते थे, तो उनसे कहा कि हमें आपके गुरु जी से मिलना है। तो बहन ने समझाने की कोशिश करी, हमारा गुरु तो वही शिव बाबा है, निराकार है, और वो तो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो उसने कहा नहीं, मुझे यहां पर दादा लेखराज जी से, बाबा का लौकिक नाम लेके, उनसे मिलना है, उनसे शास्त्रार्थ कुछ बातें करनी है, क्योंकि वो गुरुजी जो आपके गुरुजी है वो कहते हैं शास्त्रों के विपरीत बातें कि आत्मा जो है 84 लाख योनि नहीं लेती और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया, आदि आदि जो शास्त्रों की बात है उनकी बात को लेकर के उसने कहना शुरू किया। तो बहन जी ने कहा ठीक है, आप उनसे मिल लीजिएगा, लेकिन अभी तो दोपहर का समय है, आप शाम को इतने बजे आएंगे तो इतने बजे आप मिल लीजिए या कल सुबह आइए। तो बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन उन गुरुजी ने कहा कि नहीं, मुझे तो अभी मिलना है और फिर हम कल तो चले जाएंगे। तो जब उन्होंने नहीं माना तो उन्हें बहन ने कहा अच्छा मैं बाबा से पूछ के आती हूँ। तो अंदर बाबा के कमरे में गई, बाबा से पूछा, कहा कि बाबा ऐसे ऐसे वो सन्यासी आए हैं और वो अभी ही आपसे मिलना चाहते हैं। तो देखो बाबा ने अपने आराम का समय भी एकदम त्याग करके कहा हाँ बच्ची कोई बात नहीं, उन्हें लाके हिस्ट्री हॉल में बैठाओ और बाबा आता है। तो वो बूढ़ी दादी ने आकर के उन्हें हिस्ट्री हॉल में बैठाया, जो छोटा हॉल है अपना मधुबन में, और वो चली गई। और उसके बाद थोड़ी देर में बाबा आए। तो सन्यासियों का भी नियम होता है कि भाई जिसी कहीं पर आश्रम में जाते हैं किसी गुरु के आश्रम में, तो उनकी जो गद्दी होती है उस पर वो गुरु ही बैठता है, दूसरे लोग नहीं बैठते, चाहे कितने भी बड़े हों। तो वो सन्यासी लोग भी सब हिस्ट्री हॉल में नीचे बैठ गए और बाबा का इंतजार करने लगे। बस थोड़ी देर में ही बाबा आए और बाबा ने उन सब की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा अरे रे बच्चे तुम यहां नीचे क्यों बैठे हो, तुम तो ऊपर बैठो यहां पर गद्दी पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम वो तो आपकी गद्दी है और हम तो यहां नीचे ठीक हैं। खैर बाबा ने बातचीत में ही पहले जल आदि का पूछ करके पानी वगैरह मंगाया, उन्हें पिलाया, और फिर बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे देखो ये तो ब्रह्मा बाबा ने अपने लिए कहा कि देखो ये तो ना गृहस्थी था और परिवार में था, आप लोगों ने तो अपनी पवित्रता के बल पर भारत को थामा है और ब्रह्मचारी हो, आप लोगों को तो पूरा हम सब नमन करते हैं। अब बाबा ने उनकी महिमा करी और ऊपर बैठने का निवेदन किया, कहा बैठो बच्चे। बार बार बाबा के मुंह से बच्चे स्वाभाविक रीति से ही निकलता था, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बैठो, आपकी गद्दी है। तो बाबा ने बड़े प्यार से एक जो मुख्य सन्यासी था उसे पकड़ के, उसके बाहां से ना प्रेम से पकड़ के उठाया, अरे बच्चे आओ यहां बैठो, और उसे वहां पर बैठा के बाबा खुद सामने बैठ गया। देखो कितना नम्रचित, भगवान जिसके रथ में आता है तो उसके रथ के द्वारा कितनी नम्रता बाबा ने सिखाई कि यहां पर वो आए, वो तो घूमने के लिए आए थे, शास्त्रार्थ करने आए थे, लेकिन बाबा ने कितने प्यार से, नम्रता से, आदर से, सत्कार से उन्हें ऊपर बैठा के खुद सामने बैठ गए। तो ये नम्रचित का व्यवहार ने भी उनको जैसे बिल्कुल ही कहां ज्ञान की अथॉरिटी, वो पूरा ज्ञान जो बात वो समझाते थे, थोड़ी देर तक वैसे ही बात होती रही। फिर बाबा ने कहा हाँ बच्चे बोलो कैसे आना हुआ। तो वो सन्यासी दूसरे की तरफ देखे, दूसरा तीसरे की तरफ कि तुम बोलो तुम बोलो, और लेकिन सभी सन्यासी शांत भाव से बैठे रहे। तो फिर उनमें से जो मुख्य सन्यासी था उसने ही कहा कि ऑटोमेटिकली उनके मुंह से जैसे बाबा शब्द भी निकलने लगा कि बाबा हम तो इसलिए आए हैं, हमने सुना है आपका, आप जो भी ज्ञान देते हो बिल्कुल शास्त्रों के विपरीत देते हो। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, देखो ये नहीं देता, ये तो तुम्हारी जैसे और सब है संसार में, गृहस्थी था, परिवार में था, गीता पढ़ता था, लेकिन अब इसके तन का आधार लेके बस भगवान जो आता है ज्ञान सुनाता है, वो ज्ञान बाबा जो बोल के जाता है वो सब सुनते हैं। और फिर बाबा ने वही बताया, लेकिन देखो वो गीता पढ़ते पढ़ते भी पवित्र तो कभी बने नहीं, हमेशा सुना कि काम महाशत्रु है आदि आदि, लेकिन कभी भी जीवन में धारणा नहीं हुई। तो बस थोड़ा ही उन्होंने सुना, लेकिन बाबा के व्यवहार से, प्रेम से, आदर से, सत्कार से, नम्रता से वो इतने ज्यादा जैसे घायल हो गए थे कि जो पहले इतना शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे वो बिल्कुल नम्र होके और फिर हाँ बाबा ठीक है कह करके और फिर वो वहां से उन्होंने प्रस्थान किया। तो कहां एक तरफ ब्रह्मा बाप शिव बाबा के ज्ञान की अथॉरिटी पूरा और सब ज्ञान भी सुनाया वो, लेकिन कहा कि बस शिव बाबा वो सुनाता है और ये भी है गृहस्थी था, ऐसा कह के उन आत्माओं को भी बिल्कुल नम्रता से करा। तो ये है नम्रचित जो बाबा चाहता है। हम सब भी ज्ञान की सेवा करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन दूसरे का अहम वो ऐसा न हो कि उसका अहंकार को ठोस पहुंचे, ठेस पहुंचे, इसने बड़े प्यार से, नम्रता से, आदर से, सत्कार से ज्ञान भी बताना है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ उन्हें आदर, सत्कार, प्यार वो सब देना है जिससे उनके अहम को ठेस न पहुंचे। तो ये बाबा का जो देखा, और इस कारण से देखो आज हमारा जो यज्ञ है दिन दूनी रात चौगनी, बाबा ने जो ठोस नींव डाली वो कैसा बढ़ता चला जा रहा है। तो एक तरफ तो ज्ञान की अथॉरिटी, और इसीलिए बाबा ने, और निर्माण चित जो खास है कि निर्माण चित बाबा कितना बड़े दिल वाला, हाँ सबसे निर्माणता, हाँ बहुत विशाल दिल। तो विशाल दिल कौन हो सकता है, जो भी आज पहले बात भी हो रही थी, जिसने जो जितना विशाल दिल होगा, निर्माण होगा, वो बहुत सहज रीति से दूसरों को क्षमा भी करता चला जाएगा और किसी की कमी कमजोरी को दिल में स्थान नहीं देगा। तो बाबा का निर्माण चित जो बाबा ने कहा है, और जब ऐसे निर्माण की भावना होती है, दिल और दिमाग जैसे खाली होता है, तो दिमाग खाली होगा तो बाबा को ना हम भाई ट्रांसमीटर रिसीवर होता है, जैसे रेडियो है या टीवी है, रिसीवर सेट हमारा अगर गड़बड़ है तो ट्रांसमीटर जितना भी पावरफुल होगा रिसीवर रिसीव ही नहीं करेगा, तो उसके अंदर वो दृश्य या आवाज वो आएगी नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है ये इसको भी बस किसी की बातों से ही अगर दिल भरा हुआ होगा तो उस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाबा में हमने देखा बाबा के अंदर कैसे बाबा अथॉरिटी के साथ साथ निर्माण चित और निमित्त भाव के साथ आगे बढ़ते रहे। बाबा हिस्ट्री हॉल में ना हमें याद है, ये बाबा से हम कई बार मिले थे, बहुत 62 से लेकर के 69 तक कई बार मिले थे, लेकिन जो लास्ट में दो दिन मिले 17 और 18 जनवरी 1969 को, ये हमारा सौभाग्य रहा है कि जब बाबा कर्मातीत हुए उस समय हम मधुबन में ही थे और उन दो दिन में बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। तो पहले तो जब भी बाबा से मिलते थे बाबा हालचाल पूछते थे, कोई प्रश्न होता था हम कहते थे, बाबा उसका उत्तर देते थे, समाधान करते थे। लेकिन अंतिम दो दिनों में हमने क्या देखा कि जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे कि बाबा से हम ये पूछेंगे, ये सेवा की बात करेंगे, ये बाबा से अपने पुरुषार्थ की बात करेंगे, बस जो बात सोच करके जाते थे, बस वो बाबा के सम्मुख जैसे ही गए, बाबा के सम्मुख जाते ही बस बाबा दृष्टि देते थे और बाबा जरा सी दृष्टि दी, दृष्टि देते ही बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक शब्द भी नहीं, मन के अंदर जो भी भाव होते थे वो तुरंत ही बाबा कैच करते थे, क्योंकि बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। और जो कर्मातीत अवस्था का भी लक्षण है, एक है मन जीते जगत जीत, जैसे कहते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीत, तो अपने मन के संकल्पों को बाबा पूरी तरह जैसे जीत चुके थे। और इसीलिए आज भी मुरली में जैसे बाबा ने कहा ना, जब जिनकी ऐसी बात होगी वो क्या होंगे, इच्छा मात्रम अविद्या, बस इच्छा भी की भी अविद्या जैसे कि उन्हें हो जाएगी। तो ये बाबा का प्रैक्टिकल रूप हमने देखा, बाबा से लगभग 6-7 बार उन दो दिनों में मिले हम, 17-18 जनवरी 1969 और बस बाबा ने के सम्मुख जाते थे तो बाबा तुरंत ही मन की बात कह देते थे। मन की बात वही कह सकता है जिसके अपने मन में कोई संकल्प बिल्कुल व्यर्थ न चल रहे हो। और जब अपना मन बिल्कुल ही निर्विकारी होता है तो दूसरे के संकल्पों को हम तुरंत ही पकड़ सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष बात बाबा की देखी, एक तो ये बात देखी, और क्या देखा उन दो दिनों में। देखो 18 जनवरी को ना बाबा ने सुबह आके सुबह प्रातः क्लास में केवल योग ही कराया, 18 क्लास में जैसे बाबा ने 18 जनवरी की प्रातः क्लास में मुरली नहीं चलाई, आए और पूरा समय जैसे योग कराया कि आज बच्चों को मैं शक्ति से संपन्न कर दूं। उसके बाद बच्चों को गुड मॉर्निंग कह के बाबा चले गए। फिर बाबा ने कहा, हाँ ईशुदादी जो हैं उनको कहा कि भाई आज जितने भी पत्र लिखाने हो, क्योंकि उस समय ईमेल या इंटरनेट ये सब तो कुछ था नहीं, तो पत्र ही ज्यादातर आते थे, तो बाबा रोज इतने सारे पत्रों का उत्तर भी देते थे, कई बार 2-3 दिन के इकट्ठे हो जाते थे तो बाबा इकट्ठे देते थे। तो उस दिन हाँ बाबा ने कहा ईशुदादी को कि आज जितने भी पत्र हो बचे हुए सब पत्रों के उत्तर लिखा लो। तो देखो बाबा को जैसे पहले से ही आभास हो गया था कि बस इस शरीर में आज जैसे कि मेरा ये अंतिम दिन है। एक जो नक्की लेक के पास म्यूजियम है, वो म्यूजियम की बिल्डिंग भी लेनी थी, उसी दिन ही बाबा ने उस बिल्डिंग को क्लियर किया कि भाई अच्छा वो बिल्डिंग ले लो और उस फाइल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार से वो बिल्डिंग भी जितने भी रहे हुए काम थे वो सब बाबा ने जैसे पूरे करे। और यीशु दादी को बोला और भी जो भी काम रहे हुए हों उन्हें सबको पूरा करवा लो। रोज क्लास मधुबन में होती है रात को, मतलब लगभग 8:45 के करीब, 8:30-9 के बाद जब सब भोजन कर लेते हैं तो रात्रि क्लास होती है। लेकिन उस दिन बाबा ने कहा कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, तो भाई को बुला के, एक जमुना प्रसाद भाई होते हैं, तो उन्हें बुला के कहा आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा और सबको बता दो। तो पहले क्लास के बाहर एक घंटा रखा रहता था, उसे बजाया, सब इकट्ठे हो गए, तो कहा कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा। सब भोजन करके 7 बजे तक क्लास में आ जाओ। तो बस सब लोग भोजन आदि करके, क्योंकि बाहर की पार्टियां तो ज्यादा थी नहीं, केवल हम लोग ही 2-3 लोग थे और बाकी तो मधुबनवासी थे। तो सब भोजन करके आ गए और बाबा भी जैसे 7:30 बजे तक क्लास में आ गए। और उस दिन बाबा का रूप बिल्कुल ही जैसे एकदम फरिश्ते जैसा रूप ही दिख रहा था, क्योंकि कर्मातीत अवस्था को तो बाबा प्राप्त कर चुके थे पूरा का पूरा। और बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई फरिश्ता ही चल के क्लास में आया। और क्लास में आके फिर बाबा ने मुरली चलाई। अब बाबा की उम्र तो इतनी थी है? और नॉर्मल केस में कई बार आपने जिन्होंने साकार बाबा की मुरलियां सुनी हैं, टेप में भी सुनी हैं, अनुभव होगा बाबा को कभी कभी कई बार खांसी भी आती थी और कई बार कफ साफ करने की कोशिश भी, मतलब वो भी साफ करना पड़ता था बाबा को। और कई बार ऐसा होता था जैसे गला और खांसी, ये जैसे एक तरीके से कर्म भोगी कहें, क्योंकि हंसी में कई बार बाबा कहते थे कि मैं देखो शिव बाबा को कहता हूं, बाबा ये मेरी जो सखी है ना खांसी, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती, आप इससे मेरा पीछा छुड़ाओ। तो शिव बाबा कहते थे, क्या कहते थे, बच्चे ये तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है, कर्मों का हिसाब है, ये तो हर एक को भुगतना है, जिसका भी जो कर्मों का हिसाब है इसमें शिव बाबा तो कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए जिसके भी जो कर्म भोग हैं हर एक को अपने कर्म भोग चुकतू करने ही हैं। तो जब ब्रह्मा बाबा को कोई कंसेशन नहीं कर्म भोग चुकतू करने के लिए, तो हमें या आपको कोई कर्म भोग के लिए होगा कुछ कंसेशन? इसीलिए कोई भी कर्म भोग अगर आता है, शरीर की व्याधि आती है, संबंधों का आता है, परिस्थितियों का आता है, कोई भी अगर आता है उसे हम हंसी खुशी स्वीकार करते हुए चुकतु करते चले, बस ये कर्म भोग है ये भी चुकतु हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा जैसे ये खांसी का ये बहुत बड़ा कर्म भोग था, बीच बीच में कई बार ऐसा लगता था जैसे खांसी आई तो क्या होता था, लगता था जैसे बाबा को बड़ा कष्ट हो रहा होगा, आंख भी कभी कई बार गीली जैसी हो जाती थी, लेकिन खांसी रूपी परिस्थिति आती थी और बाबा के संधि के एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र होता था, लक्ष्मी नारायण का चित्र ट्रांसलाइट का वो होता था, बाबा बस उधर इशारा करके कहते थे, देखो बच्चे अभी तो ये पुराना शरीर है, 5 पुराने तत्वों का बना हुआ शरीर है, व्याधि है, कष्ट होते हैं, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा मिचनु कृष्ण बनेगा, बस नया शरीर मिलेगा, नया तत्व। तो बस ऐसा कह के बाबा के चेहरे पर एकदम रौनक जैसे आ जाती थी, फिर से कल बाबा जाके ऐसा बनेगा। और ये कहते ही बस खांसी रूपी परिस्थिति के ऊपर आत्मा की ये स्वस्थिति एकदम विजय प्राप्त कर लेती थी और बिल्कुल नॉर्मल स्थिति हो जाती थी और खांसी कहाँ गई पता भी नहीं चलता था और फिर से बाबा की वो मुरली चलती रहती थी। तो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय, ये बहुत बाबा में देखा और ये ही बाबा हम बच्चों से भी एक्सपेक्ट करता है, आशा करता है कि हम बाहर की परिस्थितियों के वशीभूत न हो, बल्कि हमारी आत्मा की स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि परिस्थिति के ऊपर सहज रीति से विजय प्राप्त कर सके। तो जब भी कोई परिस्थिति आए ना, हम तुरंत ब्रह्मा बाबा की वही पिक्चर ले आए सामने और बाबा कैसे स्वस्थिति के ऊपर परिस्थिति की पर स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता था। और उस दिन भी 18 जनवरी को तो एक वंडरफुल बात देखी, भले बाबा की तबीयत पूरा ठीक नहीं लगती थी और रात्रि क्लास जब बाबा ने चलाई, बाबा आए रात्रि क्लास में, तो मुरली बाबा ने चलाई तो एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, जबकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, सारा दिन भर भी ऐसा थोड़ा अस्वस्थता रही थी, लेकिन एक बार भी खांसी नहीं आई, जो इस बात का प्रतीक है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे तो कर्मातीत अवस्था जब होगी तो हमारा योग बल जो है सब शारीरिक कर्म भोग के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। जैसा उस दिन बाबा को देखा, एक बार भी खांसी नहीं आई और बाबा की इतनी फ्लॉलेस, इतना ऐसी मुरली चली कि एक बार भी कोई व्यधान पैदा नहीं हुआ। तो यह है कर्मातीत अवस्था का लक्षण। और जो एक देखा, एक और बात देखी है, जैसा मैंने बता भी रहा था और वहां पर भी मुरली सुनते सुनते मुझे एकदम एक संकल्प आया, आपको बताते हैं, ये तो प्राइवेट है, जैसे कि बस बाबा कुछ हमारे बारे में कुछ बोले, कुछ और गाइडलाइन दे, क्योंकि बाबा के सम्मुख जब जाते थे हमेशा यही होता था, बाबा इतना बल शक्ति भरता था कि बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत समय का जैसे एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी हो जाती थी। तो उधर हमारे मन में संकल्प आया, सामने हम मुरली सुन रहे थे 18 जनवरी की रात्रि क्लास, और इधर बाबा की तो कर्मातीत अवस्था थी, और भक्ति मार्ग में भी जैसे होता है ना कि भक्त के मन में कोई संकल्प आया, भगवान को पहुंचा, बस भगवान के मुंह से निकलता है, क्या निकलता है, तथास्तु, बस एक शब्द ही और भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो भक्ति मार्ग में हम सब भी बस श्री कृष्ण, ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण की आत्मा, तो किसी न किसी रूप में भक्ति में तो ये पूजा की हुई है। तो बस जैसे ही हमारे मन में संकल्प आया तुरंत बाबा तक पहुंचा होगा, और बाबा ने तुरंत ही नाम लेके कुछ महावाक्य उच्चार दिए जो हमारे जीवन में आज तक भी वो गाइडलाइन बने हुए हैं। तुरंत कैसे संकल्प करा और तुरंत ही कुछ सेकंड के अंदर वो संकल्प की सिद्धि हुई। तो ये कर्मातीत अवस्था की आत्मा के लक्षण है जो ब्रह्मा बाबा की, जब हम भी कर्मातीत होंगे, मन जीते जगत जीत हमारी भी स्थिति होगी, हमारे सामने भी विश्व की और बहुत आत्माएं आएंगी जो अपने संकल्पों को लेके आएंगी, अपनी इच्छाओं को लेके आएंगी, और बस जैसे ही हमारे सम्मुख आएंगी हम उनकी इच्छाओं को पढ़ के, क्योंकि तब हमारी भी स्थिति अगर ऐसी हुई मन जीते जगत जीत की हुई, मन के संकल्पों के ऊपर हमने पूरी विजय अगर प्राप्त की होगी तो हम उनके संकल्पों को पढ़ के तुरंत ही उनका समाधान कर सकेंगे, और तब उनके मुंह से निकलेगा वाह पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो यही बहुत बड़ी चीज मानते हैं, साक्षात्कार हो जाए, उनके जो भी इच्छाएं रखी है भगवान पूरी कर रहा है ऐसा उन्हें अनुभूति होती है। तो हम सबको भी वो यही अनुभव करेंगे कि हाँ यही मेरे इष्ट देव और इष्ट देवियां हैं, जैसा आज भी बाबा ने मुरली में बोला ना कि आप ही इष्ट देव और इष्ट देवियां हो, और दुनिया की आत्माओं की आवाज क्या आपके कानों तक नहीं पहुंचती, वैसे भी कोई आवाज कान पर पहुंचती है उसके लिए जरूरी है कि आसपास हल्ला गुल्ला ना हो, अगर बहुत हल्ला हो रहा होगा तो कोई व्यक्ति कुछ बात कहेगा भी तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। ऐसे ही बाबा ने कई बार कहा है अभी दुनिया में बहुत दुखी अशांत आत्माएं हैं, आप अपने आप इष्ट देव इष्ट देवियों को याद कर रही हैं, क्या आपको उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो हमें अगर उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है, इसका कारण है हमारे अपने मन की आवाज, मन के संकल्प बहुत है, उनकी आवाज में ही हम जैसे डूबे हुए हैं खोए हुए हैं, तो हमारे जो भक्त आत्माएं हैं उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंचती, इसीलिए उनको हमारा साक्षात्कार नहीं होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इष्ट देव और इष्ट देवियों का साक्षात्कार हमारे भक्तों को हो, विश्व में जो चारों तरफ हमारे भक्त हैं उनको हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम उनके दुख की अशांति की आवाज को सुन के और बस उनको उनके मन के भावों को पूरा करें। और बाबा भी साक्षात्कार कराएगा हम बच्चों के द्वारा, क्योंकि साक्षात्कार कराने वाला तो शिव बाबा ही है, उसी के पास एक चाबी है, हम बच्चों के पास तो साक्षात्कार की कुंजी है नहीं। लेकिन बाबा हमारे तन और मन का आधार लेकर के उन आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार कराएगा, जैसा कि अंत में हमने ब्रह्मा बाबा के सम्मुख भी हमने इस बात को देखा। तो उस समय के लिए अब हम तैयार हो जाए, हमारे द्वारा शिव बाबा तैयार बैठा हुआ है साक्षात्कार कराने के लिए, बस हमें अपना तन और मन इन दोनों को शुद्ध और पवित्र रखना है। बिल्कुल इनके द्वारा कोई भी विकारी व्यर्थ बातें न हो, और ये तन और मन जितना पवित्र रहेगा उतना उतना बाबा हमारे तन मन का आधार लेके संसार की आत्माओं को साक्षात्कार कराता चलेगा। तो अभी एक ये बात उस दिन देखी, फिर उसके बाद बाबा ने मुरली चलाई, मुरली के बाद बाबा बाहर आए, और बाहर आ करके बस बाबा ने, बाहर आते आते भी बाबा दो तीन बार जैसे रुके और बार बार बच्चों को दृष्टि देते रहे, एक एक बच्चे को बाबा ने दृष्टि दी कि बस आज तो ये मेरा अंतिम साकार मिलन है और मैं हर बच्चे को एक एक को शक्ति से भरपूर कर दूं। उसके बाद बाबा आए बाहर और बाबा के मुंह से शब्द निकले, कौन से? अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द पहले कभी नहीं निकले बाबा के मुंह से। उस दिन ही बाबा के मुंह से ये निकला कि अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ऐसे हाथ हिलाते हुए बाबा ने छुट्टी ली और अपने कमरे में गए, और कमरे में जाकर के बाबा दादी जी के हाथ में हाथ और नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने विदाई ली, देह का त्याग किया। तो ये कर्मातीत अवस्था की आत्मा के ये लक्षण। लेकिन इसके बाद एक आश्चर्य तो हमने उसके बाद देखा, 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, अर्ली नाइट में, तो 18 जनवरी की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का अग्नि संस्कार किया गया, जहां वर्तमान समय शांति स्तंभ है वहां पर अग्नि संस्कार किया गया 21 तारीख को। तो लगभग 65 घंटे तक शरीर रखा रहा, लेकिन न तो शरीर काला पड़ा, न शरीर में कोई दुर्गंध आई, और काफी हद तक जैसे शरीर जो है ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद थी एकदम, नहीं तो शरीर जैसी आत्मा जाती है कुछ घंटों में शरीर एकदम अकड़ जाता है। लेकिन बाबा ने प्रकृति के इन 5 तत्वों पर भी, 5 तत्वों का बना ये जो शरीर है, इन 5 तत्वों को भी इतना पवित्र कर लिया था, इन 5 तत्वों पर भी इतनी विजय प्राप्त कर ली थी कि इतने 65 घंटे के बाद भी शरीर वैसा ही चमकता रहा और काफी हद तक उसके अंदर लचक बन रहा। यह है 5 तत्वों पर विजय का प्रतीक बाबा का। तो मन पर तो हमें ये अपने संस्कारों पर तो विजय प्राप्त करनी ही है, पुराने संस्कार, लेकिन इन 5 तत्वों को भी हमें पवित्र बनाना है और इन पर भी हमें विजय प्राप्त करनी है। और जैसे ब्रह्मा बाबा को आभास हो गया था बस अब मैं जा रहा हूं, ऐसे हमारी भी इच्छा मृत्यु हो, यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा आए और या बीमारी के कारण या किसी के कारण हम अपना शरीर छोड़ें, नहीं, बल्कि हम भी जैसे दधी जैसे जो मिसाल है ना, तो ऐसे ही हमें इच्छा मृत्यु का वरदान हो, हमें भी लगे हाँ बाबा अब बस इस शरीर के साथ मेरे हिसाब किताब पूरे हुए और मैं आत्मा आपके पास आ रही हूँ, और इस संकल्प के साथ बस हम भी उड़ जाएं इस शरीर को छोड़ के, ऐसा इच्छा मृत्यु हो, वो है विजयी आत्माओं के प्रतीक। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये पांच तत्वों के बने हुए शरीर के साथ हमारा ऐसा वो हो, हम भी बाबा की तरह इन पांच तत्वों के बने शरीर पर, पंच तत्वों पर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लें। उसके लिए क्या करना है, ये जो पांच तत्व है ना, इन तत्वों के साथ हमें मित्रता करनी होगी। और ये मित्रता कैसे करेंगे, मित्रता उनके बीच में होती है जिनके स्वभाव संस्कार लगभग एक जैसे होते हैं, मिलते जुलते हैं, उनके बीच में मित्रता होती है। तो हमें भी इन पांच तत्वों के साथ मित्रता करनी है। कैसे करेंगे, मानो जल तत्व है हा? तो बाबा ने कहा है अंत में, बहुत जल का बहुत प्रभाव होगा, चारों तरफ सुनामी होगी, बाढ़ होगी, और ऐसे ऐसे जल का प्रकोप होगा, कहीं सूखा होगा, और ये जल भी बहुतों की मृत्यु का कारण बनेगा। तो हमें ये देखना है जल तत्व के साथ मित्रता करनी है, अपने संस्कारों को जल तत्व के संस्कारों के साथ मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, जल में मुख्य गुण कौन सा होता है, शीतलता का तो होता ही है, लेकिन साथ साथ एडजस्टमेंट का गुण होता है। जल को देखो, अभी गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में हो जाएगा, यहां तक कि चम्मच में लो, चम्मच में भी जल सेट हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसे हमारे भी संस्कारों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट का हमारा ऐसा संस्कार हो, हर आत्मा के साथ हम एडजस्ट होके चल सके। ऐसा नहीं भाई इनके साथ तो मैं एडजस्ट होके नहीं चल सकता, हाँ इनके साथ एडजस्ट होके मैं चल सकता हूं। एडजस्टमेंट का संस्कार जो है ना, वो बहुत आवश्यक है, तब हम जल तत्व को भी अपना मित्र बना के चल सकेंगे। और फिर क्या होगा कि कितना भी जल का प्रकोप हो, कितनी भी बाढ़ आए, सुनामी आए, वर्षा हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, जितना भी प्रकोप हो, जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, हमारी दुख अशांति का कारण जल बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि जल के साथ हमने मित्रता कर ली। जल में शीतलता का भी संस्कार है, ऐसे भी हमारे में भी शीतलता का संस्कार हो, एडजस्टमेंट का संस्कार हो। जल सदा आगे बढ़ता रहता है, अपना रास्ता बनाता रहता है, उसके सामने पत्थर भी आ जाए बहुत बड़ा, रास्ता बना के निकल जाएगा। ऐसे ही जितनी भी समस्याएं आए, परीक्षा आए, प्रॉब्लम्स आए, समस्याएं आए, हम अपना रास्ता खुद बना करके आगे बढ़ते चले, कहीं पर भी हमारा रुकना ना हो, इसका मतलब जल के साथ हमने अपनी मित्रता कर ली। तो जल हमारे मृत्यु का कारण, दुख अशांति का नहीं बनेगा। ऐसी धरती की बात बता रहे थे ना, धरती दाता है, तो ऐसी हम भी दाता बन जाए। हमारे सम्मुख जो भी आए, आज भी बाबा ने मुरली में बोला ना, दाता बनो, तो कोई भी खाली हाथ ना जाए। जो भी हमारे सम्मुख आए वो हमसे कुछ ले करके जाए। स्थूल चीज अगर होती है उसकी तो लिमिटेशन होती है, हम दे सके ना दे सके खत्म हो जाए, लेकिन प्रेम है, स्नेह है, सहयोग है, सद्भावना है, रिस्पेक्ट है, ये सब जो चीज है, इनमें तो कोई खर्चा होता नहीं। इसीलिए कोई भी आत्मा हमारे सम्मुख आए, उसको हम सब प्रकार से ये सहयोग देते हुए, इन चीजों का दान देते चलेंगे। ये चीज तो बिन, इसमें तो पैसा कोई खर्चा होता नहीं। तो बस हर एक आत्मा को इन सब सद्भावना का, गुणों का, शक्तियों का, सूक्ष्म चीजों का दान करते चलें। कोई भी आत्मा हमारे सम्मुख आए खाली ना जाए। तो जब दाता बन जाएंगे तो क्या होगा कि अंत समय में जितना भी अर्थक्वेक आएगा, भूचाल आएगा, जितना भी अर्थक्वेक, तो धरती हिलेगी, बिल्डिंग गिरेंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन बाबा ने कहा है आपके पैर ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, और ये धरती कंप भूकंप वगैरह आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता। भगवान बंधा हुआ है अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। बस कंडीशन यही है कि भगवान की ये शक्ति लेने के लिए, बाबा का सहयोग लेने के लिए, बस हमारा जो पूरा है ना दिल दिमाग वो बाबा की तरफ हो बस। और कोई अंत मते सो गते का जो गायन है तो अंत में बस और कोई की भी स्मृति ना हो, यही स्मृति हो बस। और बाबा ने कहा है जितना हमारा एक ही स्मृति में रहेंगे उतना ही बाबा का पूरा सहयोग मिलेगा। ऐसे ही वायु का क्या गुण होता है, तीसरा तत्व वायु, हर चीज को क्या करती है, हल्का बना के ऊपर उठाती है। पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, हल्का बना। ऐसे ही हम भी वायु की तरह अगर हल्के रहना सीख जाएंगे, कोई भी परिस्थिति आई, प्रॉब्लम आई, समस्या आई, तो हम भारी ना हो। कई बार भारी हो जाते हैं, किसी से बोलने को दिल नहीं करता, खाने को दिल नहीं करेगा। जब मन भारी हो जाता है ना, बाबा चाहता है ऐसी परिस्थिति कभी ना हो। हम सदा वायु की तरह अगर हल्का रहना सीखेंगे तो क्या होगा, अंत समय जितनी भी प्राकृतिक आपदा वायु के रूप में आएगी, वायु की रफ्तार 250-300 किलोमीटर भी होगी, जितना भी होगा, लेकिन ये पवन जो है, वायु हवा, हमारी मृत्यु का कारण, विनाश का कारण, समस्या का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि वायु की तरह हमने हल्के रहना सीख लिया है। और बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग और उत्साह। तो जैसे श्वास लेते हैं तो वायु को लेते हैं ना, श्वास में वायु लेते हैं, फिर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का हमारा श्वास उमंग उत्साह है, वो जितना रहेगा, हम हल्के रहेंगे तो ये वायु, बाहर का वायु हमारे मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। चौथा तत्व है आकाश। बस आकाश में कितनी विशालता होती है, ऐसी हमारा दिल भी एकदम विशाल हो और किसी की कमी कमजोरी का हमारे दिल में कोई स्थान ना रहे। उससे क्या होगा, जैसे ब्रह्मा बाबा का देखा, किसी की भी कोई कमी कमजोरी उनके दिल में नहीं रहती थी, तो आकाश से बिल्कुल हल्के जैसे रह के चलते थे, आकाश तत्व की तरह। तो क्या होता है, तो आकाश मार्ग से आने वाली जितने भी एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, रॉकेट, आकाश क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना, पानी सडनली बहुत आता है, उत्तराखंड वगैरह की तरफ भी कितना ऐसा हुआ कई बार, तो ये जो चीजें हैं ये हमारे विनाश का, मृत्यु का कारण नहीं बन सकते, क्योंकि आकाश की तरह विशालता हमने अपने जीवन में अगर धारण कर ली है, आकाश को हमने अपना मित्र बना लिया। और अंतिम पांचवा तत्व है सूर्य, अग्नि। सूर्य का क्या होता है, अग्नि का क्या गुण है, अग्नि का विशेष गुण होता है उसमें जो चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही हमारा भी ज्वालामुखी रूप योग का ऐसा हो, जो बाबा ने बताया ज्वालामुखी रूप होगा, अग्नि का रूप होगा, तो अंत में बहुत दुखी, अशांत, रोती विलखती आत्माएं आएंगी, लेकिन हमारा अगर ज्वालामुखी रूप होगा, हमारे सम्मुख रोती हुई आत्मा आए, बाबा ने कहा उसका रूप बदल जाए और वो हंसती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए और हमारे सम्मुख आकर के शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, ये है हमारा अग्नि का रूप, सूर्य का रूप। और इस तरीके से ये पांचों तत्वों को हम लोगों ने जितना भी मित्र बनाया हुआ होगा, तो क्या होगा, हम जब शरीर छोड़ेंगे ना, तो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, कोई परिस्थिति के कारण, बीमारी के कारण, उनके कारण हमारी मृत्यु नहीं होगी, और उस तरीके से हम विजयी होकर के जाएंगे। और यही हमारी अंतमते सोगते का लक्षण है, और बाबा चाहता है हम उसी अंतिम स्थिति को प्राप्त करते हुए चले। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, जिन्होंने हमें मन जीत और प्रकृति जीत, हम कैसे बने और अनुभवों की अथॉरिटी का ज्ञान से भंडारा भरा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। अभी योग चलेगा, सभी योग में बैठेंगे।
वरदान बाबा शिक्षाएं तुम्हारी। ओ, ओ, ओ मीठे बच्चे के है बाबा बेहद प्यार दिया, ज्ञान गुण शक्तियों से हमको श्रृंगार किया, पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की, पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की, आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, भूल नहीं पाएंगे पालना सकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना सकार की, आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा।